حسین مولا، یا حسین مولا، یا حسین مولا، یا حسین مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، صلوات بدی محمد علی محمد. اذان محترم ظاہری کے بعد اور پھر دو مجلسیں انشاءاللہ اور باقی بچیں تو تھوڑا تیزی سے مطلب کو لے کر آگے چلیں. کل ہم نے ایک ہستی کا ذکر کیا تھا. اچھا، ان میں ہر ہستی کا الگ الگ تذکرہ ہے، لیکن ہم ان شخصیات کا انتخاب کر رہے ہیں جن کا تعلق خانہ کعبہ کی تعمیر یا عمارت سے یا بہرحال منسلک رہا. ہیں تو سبھی خانہ کعبہ کے وارث، لیکن بہرحال جن کے واقعات خاص طور پہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہیں، ورنہ جب اجداد پیغمبر کا باب ہوتا ہے تو پھر ہر ایک کی تفصیل الگ الگ بیان کرتے ہیں. بہرحال جناب فہر کے بعد ان کے بیٹے غالب، غالب ابن فہر، غالب کے بعد ان کے بیٹے لوئی، ان سب کے کارنامے ہیں. انہوں نے حجاج اکرام کے لیے کنویں تعمیر کروائے عرفات میں، منا میں، مکے کے باہر، تاکہ ان کی پریشانیاں کم سے کم ہوتی جائیں. لوئی کے بیٹے کعب، کعب ابن لوئی، آج ان کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بیان کریں گے، پھر اس کے بعد پہنچیں گے انشاءاللہ آج قصے تک پہنچ جائیں گے خدا نے چاہا، اور پھر کوشش یہ کریں گے کہ قصے کے بعد ذرا بعد کے واقعات پر بھی، اب خانہ کعبہ پہ چڑھائیاں کی ہیں لوگوں نے، وہ بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں تاکہ پرسوں تک بات کہیں تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی. ایک سلوات بھیجیے بلند آواز سے محمد علی محمد. دیکھیے، عربوں میں یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی خاص واقعہ ہوتا تھا تو وہاں سے سال کا آغاز شروع کر دیتے، جیسے عیسوی ہے، جناب عیسیٰ کے بعد یہ سن عیسوی شروع ہو گیا، ہجری ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے 13 سال تک بیست کا سال کاؤنٹ کرتے ہیں، 13 بیست کے حضور، پہلا بیست کا سال، دوسرا بیست، بیست سے پہلے کون سا سال تھا؟ عام الفیل. کیا تھا؟ عام الفیل. 40 سال تک تھا، یعنی فیل کا واقعہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کے بعد یہ نیا سال انہیں نے فیل کے نام سے شروع کر دیا. اور 13 عام الفیل آپ جانتے ہیں کہ، یا کبھی کہیں پر ہے 25 عام الفیل، کہیں ہے 26 عام الفیل، یہ 25, 26, 27 عام الفیل جو ہے، یا کہیں ہے 30 عام الفیل، یعنی بعثت کے وقت مولائے عارفان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا سن مبارک 10 سال کا تھا، زیادہ تر یہی ہے 30، باقی لوگوں نے اپنے لکھا جو بھی لکھا، زیادہ کیا ہے 30 عام الفیل. یہ 30 عام الفیل وہ سا سال ہے کہ جس سال آپ کا یعنی مولائے عارفان تشریف لائے خانہ کعبہ میں. اب آئیے، اس سے پہلے کون سا سال تھا؟ اس سے پہلے سال چلتا تھا کعب، کعب اول، کعب دوم، کعب سوم، کتنے سال تک چلا یہ؟ 520 سال. یہ اتنا بڑا آدمی تھا کعب ابن لوئی، پہلے میں اس کی اہمیت بتا دوں نا، پھر واقعہ بتا کہ اتنا بڑا آدمی تھا، اتنا بڑا آدمی تھا اس نسل میں کہ اس کے بعد، اس کی وفات کے بعد، ان کی وفات کے بعد یہ شروع ہو گیا عام الکعب، کعب کا ساتھ، اور کتنے سال تک چلا؟ فیل تک. 520 سال کا فاصلہ ہے جناب کعب میں اور یہ فیل کے واقعے میں. تو کتنا بڑا، کتنی بڑی ہستی تھا کہ 5 صدیوں تک جس کا نام، جس کے نام کا سال چلتا رہا. یعنی درمیان بڑی بڑی شخصیتیں آئیں، ان کا ذکر کریں گے، لیکن یہ اتنی بڑی شخصیت تھی جو سب پر حاوی تھی، کعب ابن لوئی. یہ کعب ابن لوئی، میں نے عرض کر دیا، شجرہ تو بنا ہی دیا، کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر، یہ ان کا شجرہ ہے کعب. انہی نے پھر یہ کام کیا کہ ایک بنیاد ڈالی، وہ بنیاد جو قیامت تک جس پر عمارت کھڑی رہی. جمعہ کا نام تھا عروبہ، عین رے واو بے اور پھر وہ تائے تانیس، عروبہ، تو عروبہ کہا جاتا تھا. آپ عروبہ کے دن میں لوگوں کو جمع کرتے تھے، چاہے باہر سے آئے ہوئے ہوں، چاہے مکے کے ہوں، जोहर के वक्त सबको जमा कर लेते थे और एक खुतबा इरशाद किया गया, एक अखलाकियात पर तालीमात पर, खासतौर पर आपकी अखलाकी तालीमात बहुत मशहूर है कि शराब अक्ल को जाहिल कर देती है, शराब ना पिया करो, शराब के नज़दीक ना जाया करो, अपने हमसाए के हक को पामाल ना करो, ना हुकूक के ऊपर बात, हुकूक इंसानियत पर। ये इस बात की दलील है कि इस नस्ल में जहां ये नूर आ रहा था वहां कोई इस रिच्स के करीब, भाई हराम का जब भी हुक्म आया, लेकिन ये जानते थे जहां ये अनवार मुकद्दसा थे कि ये रोजे अव्वल से ही अल्लाह के दीन में हराम है। तो आपके खुदबात मौजूद हैं इब्ने अश्शाम में, इब्ने साद में, आपके भी और दीगर अफराद के भी, कि ये मना करते थे कि शराब नोशी ना किया करो, खुतबा देते थे, मेहमानों की हुकूक बताते थे कि जो आते हैं अल्लाह के जाहिर आते हैं, अल्लाह के घर के जाहिर, इनका एहतराम किया करो, ये खुतबा देते थे, तो जमा करते थे लोगों को। तो आहिस्ता 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 लोगों को आदत हो गई, तो उन्होंने इस दिन को क्या कहना शुरू कर दिया, यौमुल जुमा, यौमुल जुमा, क्योंकि सब जमा होते थे ना, जमा होते थे, तो उसका नाम पड़ गया यौमुल। फिर वो उरूबा खत्म हो गया, इस दिन को कहा जाने लगा जुमा। काब के बाद से फिर आखिर तक ये सब की सुन्नत थी, इनमें से हर एक की, अगरचे के इनके जाहिरी इख्तदार नहीं रहा था मगर रूहानी इख्तदार था, जाहिरी इख्तदार बनी खजा के पास चला गया था, बनी जुर्म की नाहलियों की वजह से बनी खजा इख्तदार पे काबिल हो गए थे, मक्के की खाने काबा की चाबियां ये सब उनके पास, लेकिन रूहानी इख्तदार इनके पास रहता था, यानी रूहानी तौर पे सब इनका इत्तबा करते थे, जानते थे कि भाई ये वारिस है इब्राहिम है, वारिस इस्माइल है, असल वारिस है, चाहे जाहिरी तौर पे इनके पास मनसब हो या ना हो, असल वारिस ये है। और यही सिफत आप देख लीजिए कि आखिर तक जारी रही कि जाहिरी हुकूमत किसी के भी पास हो, किसी के भी पास हो, रूहानी इख्तदार किसके पास रहा हर दौर में। इसीलिए अइमा ताहिरीन को सबको शहीद किया गया, क्योंकि हुकूमतें जानती थी कि ये इख्तदार हमारे पास जरूर है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के दिलों पर जो हुकूमत करते हैं वो आले रसूल हुकूमत करते हैं, अइमा ताहिरीन हुकूमत करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जाहिरी इख्तदार भी उनका था, लेकिन चलिए तारीखी एतबार से खिलाफत नहीं थी उनके पास, तख्त सल्तनत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उनके फॉलोअर्स थे, हर जमाने में उन्हीं की इत्तबा करते थे, दुनियावी अहकाम हो या उखरवी अहकाम हो, दीनी अहकाम हो दुनियावी अहकाम हो, सब पे किसकी तरफ रुजू करते थे, अइमा ताहिरीन की तरफ। तो ये उस वक्त से था कि इनका ये इख्तदार इनसे कोई छीन नहीं सकता था। तो यौम जुमा की बुनियाद डाली, जुमे के खुतबे की बुनियाद डाली, और अम्मा बात अल्लाह के नाम के बाद कहते थे अम्मा बात, ये अम्मा बात की ऐसी बुनियाद डाली कि कयामत तक जो भी खुतबा देगा, कहीं खुतबा देगा, उर्दू खतीब हो, फारसी खतीब हो, अरबी खतीब हो, अम्मा बात के बाद फिर बात को शुरू करता है। अम्मा बात की बड़ी तफसील है, अब वो नहवी बहस है भैया, कहाँ मजलिस की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि अम्मा असल में है क्या, महमा से कैसे बना, क्या बना क्या नहीं बना, कितने माने हैं, वो हमारी मजलिस उसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जिसको ज़्यादा ज़रूरत हो इसको सीखने की, तो वो पूरी नहव सीखे, जब नहव सीखेगा तो फिर उसको, यानी अरबी ग्रामर पढ़ेगा तो फिर उसको समझ में आएगा कि अम्मा का माना क्या है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो ये इन्होंने यौम जुमा की बुनियाद डाली, क्योंकि जानते थे कि इस जुमे का जिक्र। अब ये नाम कैसा था कि परवरदिगार आलम ने इस दिन को किस नाम से पुकारा, जमाने जाहिलियत में नाम राइज हो चुका था ना, जुमा, यौमुल जुमा, यौमुल जुमा, यौमुल जुमा, हुजूर ने भी। अब इंतजार ये था कि इसका कुरान में नाम क्या है, तो हुजूर ने भी इसी दिन को बरकरार रखा, इसी दिन के खुतबे को बरकरार रखा, इसी दिन की तकरीरों को बरकरार रखा, और उसके बाद कुरान मजीद में सूरह जुमा ने मोहर सख्त कर दी कि जो नाम काब इब्ने लुई ने रखा था वही लोहे महफूज में उसका नाम महफूज था, यानी उनके इल्म में था। देखिए भी दलील देते ना, एक उनके इल्म में था या तो कि भाई ये नाम है जुमे का, ये नाम इतना पसंद आया मशीयत को कि इसका दिन का नाम अल्लाह ने भी यही रखा, सूरह जुमा है ना, पूरी इसकी गवाह है, तो सूरह जुमा। अब एक दलील और है इसकी, वो दलील क्या है, आपका खुतबा महफूज है अंसाबुल अशराफ में, बुलाजरी की जो अंसाबुल अशराफ है उसमें आपका खुतबा महफूज है, जिसमें आप तमाम लोगों को जमा करके बताते हैं कि इस काबे की अजमत का एहतराम करना, इस काबे की अजमत का एहतराम करना और इससे जुड़े रहना, क्योंकि इस काबे से, इस जरिए से एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है। जानते हैं ना, इसका मतलब सब जानते हैं, आबा अजदाद के कौन आने वाला है, आगे और वजाहत के साथ, इस काबे से एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है। अच्छा, मैं इस जुमले को ले जाता हूं कहां, इस काबे से जो खबर आएगी वो खबर है अली की खबर। क्यों? अगले जुमले में दूसरी बात वाजे हो गई ना। पहला जुमला क्या फरमाया कि इस काबे से एक बहुत बड़ी खबर आने वाली, फिर फरमाते हैं और यहीं से खातिमुल अंबिया मबूस होगा, यहीं से खातिमुल नबीन मबूस होगा, यहीं से आखिरी नबी मबूस होगा, और ये वो खबर है जो मूसा भी देकर गए हैं, ईसा भी देकर गए हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद। एक सलवात और भेज। सलवाते नाय शर्मा दीजिएगा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि आप आसमानी किताबों के भी आलिम थे, क्योंकि बैतुल मुकद्दस का तो कभी सफर नहीं किया, लेकिन खबर दे रहे हैं कि मूसा भी यह खबर लाए हैं और ईसा भी यह खबर लाए कि यहां से खातिमुन नबीन आने वाले। लिहाजा इनमें से हर एक खबर देके जाता था, मालूम था ना। लिहाजा जमीन हमवार कर रहे थे कि किस किस चीजों की जरूरत हो सकती है, उन सब के लिए राह को हमवार कर रहे थे। तो जब इनका इंतकाल हुआ तो इतना बड़ा आदमी था, इतना बड़ा आदमी था कि यहां से साल का आगाज कर दिया लोग। अब ये 520 साल तक साल चलता था काब के नाम का, और ये तारीखों में मौजूद कि काब के नाम का साल चला है 5 सदियों तक, 6वीं सदी में दाखिल हो गया था, 520 साल काब का इंतकाल हुआ। काब के बाद उनके बेटे मर्रा के बाद उनके बेटे कल्लाब इब्ने मर्रा। इनमें से हर एक की मैंने कहा तशरीह अलग है, लेकिन हमें जाना है सीधे उन हस्तियों पे जिनका बराह रास्त खाने काबा से ताल्लुक रहा और खाने काबा की तामीर या उसके इंतजाम में उनका हिस्सा रहा। कल्लाब के बेटे थे कुसै इब्ने कल्लाब। ये अजीम तरीन हस्ती, ये वो तीसरा फर्द जिसको लकब मिला कुरैश का, बल्कि कुछ ने तो ये कहा कि नहीं यही कुरैश है, अब वो लो आखिर इसी का लकब, लेकिन क्योंकि मौजूद है सीरत की किताबों में लिहाजा मैंने पहले दो के नाम आपकी खिदमत में पेश कर दिए थे, नजर इब्ने कनाना और फहर का नाम फहर इब्ने मालिक, और तीसरी हस्ती कुसै। कुसै अपने तमाम अजदाद में जो अजीम तरीन दो तीन लोग गुजरे, बहुत बड़े मुंतजिम थे, यानी इंतजाम बहुत जबरदस्त करने वाले थे, लेकिन के वाकयात बड़े दिलचस्प। मैंने अर्ज कर दिया कि खाने काबा इनके हाथ से बनी जुरहम के हाथ से जा चुका था, बनी खजा के हाथ में था, खेसे खजा, क्योंकि दो कबीले हैं, एक है कजा काफ से, वो है काफ जुआद, वो है कजा जुआद से, ये है खजा खेजे, वो अलग कबीला था, ये अलग कबीला था, कभी कभी लोग उसको एक ही समझने लगते, अलग है, बनी खजा अलग, बनी खजा अलग, बनी खजा खजाई कहलाते थे ना, हुलैल खजाई यहां का आखिरी मुतवल्ली था बनी खजा का, उसके बाद कुसै के पास आए। लेकिन कुसै के पास आए कैसे? जब कुसै के वालिद के जनाब कल्लाब का इंतकाल हुआ तो कल्लाब के दो बेटे थे, एक जोहरा जवान था, वो तो वही रहा मक्के में, ये जोहरा वही हैं जिनसे कबीले चले थे बनी जोहरा, जिनको बनी जहरा भी लोग कह देते। नहीं, देखिए जहरा और जोहरा का फर्क बताना आपको बड़ा जरूरी, आजकल बड़ा मसला हो गया है, क्या फर्क है जोहरा और जहरा में? आजकल लोग जहरा लिखते हैं ना नाम जहरा, तो आगे अलिफ की जगह हे बना देंगे और पढ़ते हैं जहरा, जहरा पढ़ते हैं। ये जहरा नहीं होता, जहरा अलिफ से आता है, जे हे रे अलिफ, जहरा नाम है, लेकिन चलिए हम लोग उर्दू में गलत उलाम हो गया, जहरा कहते हैं, लेकिन जहरा जहरा नाम है, इसमें आएगा अलिफ, और अगर आप हे बना देंगे छोटी गोल हे तो वो जहरा नहीं होता, वो होता है जोहरा। जोहरा और जहरा में ये फर्क है, जैसे मुंजिर और मंजर का फर्क बड़ा मसला हो गया, नाम है मुंजिर अब्बास, लिखता है मंजर अब्बास, मीम नून जोए रे, ये मंजर है, ये क्या है? ये जोए जहां पर आ जाए ये है मंजर, ये है नजर से, ये है मंजर, मंजर अब्बास होगा, मुंजिर नहीं होगा, क्योंकि साहब ने लिखा, मैंने कहा आप तो इंग्लिश में मुंजिर लिख रहे हैं, ये है ना, ये मुंजिर ही तो है, समझाया मैंने कहा मुंजिर नहीं है, ये मंजर है, मुंजिर है नजीर से, डराने वाला, मुंजिर यानी डराने वाला, समझ में आ गई बात? तो यहां पर है जाल मुंजिर, मीम नून ये आ जाएगा नजीर, नजीरा से क्या आएगा मुंजिर, समझ में आ रही बात? तो मुंजिर जब लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, मंजर लिखेंगे तो जो इसे लिखेंगे, क्योंकि दोनों का माना बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन आजकल जो गत बन रही है उर्दू की, बस क्या किया जा सकता है, मुझ जैसे आदमी एक दो आदमी बता देंगे तो बता देंगे, बाकी तो अल्लाह वाली के सबका सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और लिखने में तो बेड़ा गर्क हो चुका है उर्दू का, लिखने में तो ऐसी ऐसी उर्दू आ रही है कि वह ना पूछिए आप। वो चैनल देखता रहता हूँ, खून खोलता रहता है मेरा, पता नहीं क्या क्या लिख रहे होते हैं, कुछ नहीं मालूम, उन्हें खुद भी नहीं पता क्या लिख रहे हैं, बस जो है बस लिख दो उर्दू, उर्दू समझ के पता नहीं कौन सी जबान लिख रहे होते हैं। वो जो नीचे पट्टी चल रही होती है ना, उसके ऊपर जो उर्दू आ रही होती है, वो बस क्या बताएं आपको किस किस्म की। ऐसा लगता है कि प्लानिंग के तहत इसको मिटाया जा रहा है कि जबान मिटाओ ताकि इनका विरसा भी खत्म हो जाए। जबान खत्म तो विरसा खत्म, कौन किताब खानों में जाएगा, कौन किताबें तलाश करेगा। खैर, कहाँ की बात थी, कहाँ चली गई। तो हम अर्ज करते हैं, बड़े बेटे का नाम था जोहरा, जवान था, कल्लाब के इंतकाल के बाद वो वहीं रह गए। इनकी वालदा चली गई बनी अजरा की बस्ती की तरफ, एक रिवायत के मुताबिक दूसरा अक्द किया चली गई। कुसै उस वक्त छोटे से थे, कुसै को अपने साथ ले गई, पैदा हो चुके थे कुसै, लेकिन अपने साथ माँ ले गई बनी अजरा। बहरहाल ये तो तय है कि बनी अजरा की बस्तियों में चली गई थी वालदा। वालदा जब वहां गए, अब ये बड़े हुए, जनाब तीर अंदाजी में इसमें उसने, जैसे जनाब अब्दुल मुत्तलिब के वाकयात आएंगे इंशाल्लाह कल तक पहुंच जाएंगे वहां पर हम, या परसों पहुंच जाएंगे, जनाब हाशिम जनाब अब्दुल मुत्तलिब दोनों का जिक्र आएगा काबे के बाब में। जब वहां चले गए तो बेहतरीन तीरंदाज थे, बेहतरीन घोड़सवार थे, मुकाबला जीत जाते थे। तो एक दफा जब मुकाबला जीत गए तो इनके हम उन बच्चों ने, नौजवान थे हम, उन बच्चों ने तानाजनी शुरू कर दी कि तुम हम में से नहीं हो, तुम हमारे कबीले के नहीं हो। तो उसने कहा फिर मैं कौन हूं, कुसै ने कहा फिर मैं कौन हूं, जैद नाम था इनका असल नाम, कुसै इसलिए कि दूर हो गए थे ना मक्के से, इस वजह अक्सा से निकला दूर, तो ये कुसै इसलिए इनको कहा जाता था। कि तुम हम में से नहीं हो, जाओ अपनी माँ से पूछो, ये बहुत बड़ी बात होती थी कि जाओ अपनी माँ से पूछो तुम कौन हो। ये आए माँ के पास, कैसे ऐसे हुआ है आज लोगों ने मुझे ताना दिया है, मैं कौन हूं? तो माँ ने कहा खुदा का शुक्र अदा कर, तू इनमें से नहीं है, तू अजीम खानदान का फर्द है और तेरा बाप भी अजीम है, ये तेरी कहां बराबरी करेंगे, तू अदनान का बेटा है, तू नजर का बेटा है, तू फहर का बेटा है, तू कल्लाब का बेटा है जो सैयदुल बता था, बता का सरदार है, तू उसका बेटा है, तू काब का बेटा है जिसका ये साल चलता है। अब जब इन्हें ये सुना कि मैं वहां का हूं मक्के का हूं, तो अब इनका कि मां मैं तो जाऊंगा, कहां मैं भी ये चाहती हूं कि जा और अपना मकाम संभाल, इंतजार कर रही थी कि तू जवान हो जाए जा। लेकिन वो बनी कजा, अब ये काफ से आ गया, काफ जुआद वाला कजा, बनी कजा का काफिला जाएगा हज में, उनके साथ भेज दूंगी, तेरा बड़ा भाई वहां है, खत लेता जा उसके नाम जोहरा के नाम। जब जोहरा को इतला पहले हो चुकी थी कि मेरा भाई बनी अजरा की बस्तियों से वापस आ रहा है, अब ये पहुंचे, नौजवान थे, वहां पहुंच गए जनाब, थे बहुत मनकर, काबिल बहुत, यानी क्रिएटिव माइंड जिसको कहते ना कि इब्तिकार अमल, कि चीजों को बनाना जानते थे कैसे बनाया जाए। तो अपनी जहानत से ये करीब हो गए हुलैल खजाई के। हुलैल कौन, हलील है कहीं, कहीं हुलैल है, लेकिन चलिए जो भी है, ये खजाई कौन है, ये सरदार है, इसके पास काबे का इंतजाम है सारा, मक्के का सारा इंतजाम, और कुसे जानते हैं कि यह हक मेरा है, लेकिन बनी खजा से ले कैसे ले नहीं सकते। उसका कोई बेटा नहीं है, उसकी एक बेटी है हुब्बी, उसका नाम है हुब्बी। ये करीब हुए, जहानत की वजह से इंतजाम में हिस्सा लेना शुरू किया, हुलैल के करीब हो गए। जब करीब हुए तो उसे रिश्ता तलब कर लिया कि मैं चाहता हूं तेरी बेटी से अक्द करूं। तो उसने भी देखा भाई जहीन जवान है, बेटा तो उसका कोई था नहीं, तो उसने कहा जहीन जवान है, खानदानी आदमी है, बनी अदनान है, बनी मुजिर है, बनी काब है, लिहाजा उन्होंने फौरन मंजूर कर लिया, हुब्बी से शादी कर। जब हुब्बी से अक्द हुआ तो इनके चार बेटे हुए, अब्दुद्दार पहला, अब्द मनाफ यानी जनाब हाशिम के वालिद, अब्द मनाफ, अब्द कुसै, अब्दुल अज़्ज़ा, ये चार नाम अपने बेटों के रखे। जब चार बेटे हुए तो हुलैल ने वसीयत की, क्योंकि मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं, लिहाजा मेरे बाद काबे की तौलियत इनके पास जाएगी, ये काबे के मुतवल्ली होंगे। बनी खजा होशियार होंगे कि ये क्या मसला हो गया, लिहाजा जब उसका इंतकाल हुआ तो खुद ब खुद जनाबे कुसे के बेटों के पास उसकी तौलियत आ गई। जब आ गई तो इंतजाम करने वाले जनाबे कुसे थे। दूसरी रिवायत पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि लोग पढ़ें जाके फिर कहें कि आपने ये नहीं बताया, ये भी लिखा तो बता दें। वो है जरा नाकाबिल यकीन, लेकिन बर्दाश्त कर लीजिएगा। अच्छा ये बताइए, आज काबे की आमदनी से शराब पी जा रही है कि नहीं? उस्ताद कमर जलालवी ने तो 50 साल पहले कह दिया था ना, बस एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब ये जाहिर है कि नकल करना इसलिए जरूरी है कि तारीख का हिस्सा है, मुझे पसंद हो या ना हो, आपको पसंद हो या ना हो, वाकया तो है ना। इसका भाना या भतीजा था अबू गिफ्शान मलकानी। जब इसका आखिरी वक्त आया तो इसने अपनी बेटी को अपनी जगह जानशीन बनाया, हुब्बी को, कि मेरी जानशीन होगी हुब्बी, और अबू गिफ्शान मलकानी इसके साथ काबे की तौलियत का हिस्सेदार होगा। तब हुब्बी तो नहीं जा सकती थी दरवाजा खोलने, हुब्बी के शौहर थे कुसै। तो एक दिन हुब्बी की नियाबत में कुसै दरवाजा खोलते थे खाने काबा का, एक दिन अबू गिफ्शान मलकानी। अबू गिफ्शान मलकानी के अजाइम कुछ और होते थे, वो वैसे था सरदार के जितना चढ़ावा आए माल आए लेके चलो अय्याशी करो। ये इस पर एक सलावत और भेज दीजिए। अभिनी ने पहले अपनी अहलिया को, ये दूसरी रिवायत पढ़ रहे हैं ठीक है ना, ताकि दोनों आपके सामने आ जाए। तो इन्होंने अपनी अहलिया को एतिमाद में लिया कि देखो तुम जानती हो कि इस पे हमारा हक है, हम इब्राहिम इस्माइल के वारिस हैं, हम जुर्रियत इब्राहिम हैं, हम जुर्रियत इस्माइल, मेरा बाप मेरा दादा ये सब बताया। उसने कहा मुझे कोई एतराज नहीं, मैं जानती हूँ और मेरा बाप भी ये बात जानता है, ये हक तुम्हारा है, मुझे कोई कहा अगर तुझे एतराज नहीं है तो फिर मैं ले लूंगा, कहा मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन ये अबू गिफ्शान अल मलकानी ये सबसे बड़ी रुकावट है, कहा इसको छोड़ दे, तू राजी है? उसने कहा मैं राजी, कहा बस ठीक है अब मैं निपट लूंगा। तो ये हर हफ्ते 10 दिन के बाद जाता था ताइफ में अय्याशियां करने के लिए अबू गिफ्शान मलकानी। तो वहां जब ये एक महफिल में, जो बहरहाल जैसी भी महफिल थी, वहां मदहोश पड़ा हुआ था, तो ये पहुंच गए उसके पास और जाने के बाद इसको झंझोड़ा और काबे की तौलियत पे बात करनी शुरू की, सौदेबाजी शुरू। वो उस वक्त जुआ हार रहा था, जुआ, और जब जुआरी जुआ हार रहा हो तो आप जानते हैं कि क्या क्या चीजें हार जाता है। बड़ी इबरतनाक दास्तान है जुआरियों की, अल्लाह इस बला से हर मोमिन मुसलमान बल्कि हर इंसान को महफूज रखे। यकीन जाने मैंने बड़े भयानक अंजाम देखे इस जुए के, ये जुए के, आप इसको मामूली ना समझिएगा, चाहे बड़े पैमाने का हो चाहे छोटे पैमाने का जुआ, इस जुए की नजर हो जाती है बड़ी बड़ी ममलिकतें, बड़ी बड़ी सल्तनतें और बड़ी बड़े अवाम के गरोह इस जुए की नजर हो जाते हैं। ये जुआ सिर्फ एक तरह से नहीं खेला जाता, जुआ कई तरीकों से खेला जाता है ना, ये तख्त और ताज की जो लड़ाइयां लड़ते हैं ना, अपनी दानिश में खुद कहते हैं कि जुआ खेल रहे हैं, जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आई हमारी बात? कुछ इशारे हम करते हैं कि समझाने के लिए कि बात समझ में आ जाए, कि लोगों का खेल होता है, और वही वाली बात कि किसी की जान गई आपकी अदा ठहरी, आप खेल रहे हैं, आप जुआ लगा रहे हैं और करोड़ों इंसानों की किस्मत से खेल रहे हैं, और ये बेचारे करोड़ों इंसानों को समझ में नहीं आ रहा कि हम तो ताश के पत्तों की तरह हैं या शतरंज के बोर्ड पर रखे हुए मोहरे हैं, चाहे अपने आप को बादशाह कहें चाहे वजीर कहें, उठा के रखने वाला कोई और है। अब तो समझ में आ गई बात है, अपने आप को बादशाह समझ रहा है, अपने आप को वजीर समझ रहा है, इसको मालूम ही नहीं कि ऊपर कोई बैठा हुआ है जो इसको उठा उठा के कभी उसको वहां रखता है, कभी प्यादे को बादशाह से मरवाता है, कभी बादशाह को प्यादों से मरवा देता है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो ये जुआ ऐसा हो, कौम के साथ भी जुए खेले जाते हैं। तो वो जुए में हार रहा था, उस वक्त पैसों की जरूरत थी, माल ताओ। आप जानते हैं कि तारीख का ये वाकया क्या है, एक ऊंटनी और एक मशकीजा शराब, ये उसने काबे की कीमत लगाई। देखिए हम इस रिवायत को नहीं मानते, लेकिन हमारे बिरादरान के रिवायत मौजूद है, यही तो हम उनसे कहते हैं कि कल भी तो ऐसे ही हुआ था, शराब, एक मशकीजा शराब और एक ऊंटनी, बस ये कीमत लगाई, कर देता हूं दे दिए, उसे सनद लिखवा ली, उससे साइन वाइन करवा ली, सब लेके आ गए और मक्के में लाके ऐलान कर दिया कि ये मेरा हो गया। अब बनी खजा हैरान हो गए, ये क्या हुआ, काबा हाथ से निकल गया हमारे, क्योंकि उनके लिए तो आमदनी का जरिया था ना, ये चाहते थे किसी और मकसद के, अल्लाह के घर को अल्लाह का घर रखा जाए, لہذا اب وہ بنی خزاع جنگ کے لیے تیار ہو، وہ بھی جب ہوش میں آیا شور مچانا شروع کر دیا اس نے، یہ کیا ہو؟ لیکن معاہدہ تو ہو چکا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ شروع ہو مکے میں، جنگ. ان کے حامی قبیلے بھی آ گئے، ان کے حامی قبیلے بھی آ گئے، سب ان کے بھی قبیلے تو موجود تھے نا، وہ سب ان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے. سینکڑوں آدمی قتل ہو گئے. اس کے بعد وہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آخر میں بیٹھو بھائی حل نکالو، حل نکالا گیا. ایک تیسرے فریق کو جس کو کہتے ہیں امپائر بنا گیا، اس کے ہاتھ میں فیصلہ دیا گیا. اس نے فیصلہ دیا کہ کعبے کی تولیت کا حق ہے قصی کے پاس، ان کے جو مرے ہیں قتل ہوئے ان سب کی دیت ادا کرو، اور جو ان کے مرے ہیں وہ سب رائے گا. بنی خزاع کے جو گئے وہ بنی بکر اور بنی خزاع، یہ الائنس تھے اس وقت، الائنس تھا ان کا یہ سب آج، اور یہ آخر تک الائنس رہا، فتح مکہ تک الائنس رہا بنی بکر اور بنی خزاع کا. یہ قبیلے ایک طرف تھے اور ان کے ساتھ دوسرے قبیلے تھے، بہرحال بنی ربیعہ وغیرہ سب ان کے ساتھ تھے. اب یہ جناب فیصلہ ہو گیا قصی کے، یہ وہ روایت سمجھ گئے. پہلی روایت کیا پڑھی میں نے کہ نہیں، یہ فیصلہ حلیل کر کے گیا تھا کہ میرے بعد میرے نواسے اس کے حقدار ہوں گے. تو نواسوں کے پاس آئی تو خود بخود بہرحال اس روایت کو رکھیے یا اس روایت کو رکھیے، دونوں روایتوں کو رکھیے. جنگ تو ہوئی تھی، جنگ اس لیے کہ جب بیٹوں کے پاس آیا، جب بھی آ گیا نا ادھر بنی کلاب کے پاس آ گیا، بنی کلاب بنی نظر اس طرف آ گیا، لہذا جھگڑا ہوا جناب، جنگ ہوئی. جنگ دونوں صورتیں ہوئی، لیکن میں نے اس لیے دونوں روایتیں رکھ دی کہ بھائی کہ ایک ادھر کی ہے ایک ادھر کی ہے، دونوں رکھنی پڑتی ہیں، ورنہ کہیں گے جی صاحب یہ نہیں یہ ہوا تھا وہ نہیں وہ ہوا تھا. جو بھی ہوا تھا تو آپ کی روایت کے حساب سے بھی کعبے کی قیمت کیا لگائی گئی؟ ایک اونٹنی ایک مشکیزہ شراب. ہم نہیں مانتے یہ شراب والی روایت کو، ہم نہیں مانتے. بہرحال واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب جب یہ آیا تو انہوں نے کعبے کی چابی اپنے بڑے بیٹے عبد الدار کو دی، جن کا قبیلہ بنا بعد میں بنی عبد الدار، عبد الدار کو دی یہ کعبے کی چابی تم رکھو. اور یہ اتنا بڑا منصب ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آج تک بنی عبد الدار کے پاس چابی ہے، یعنی انہی کے قبیلے کے افراد کو یہ دی جاتی ہے. کیوں؟ فتح مکہ کے وقت حضور نے پوچھا تھا، جب کہا نا کہ بھائی اب یہ کعبے کی چابی کس کے پاس ہوگی، کہ اب تک کس کے پاس تھی؟ حضور تو معلوم تھا، پوچھا اب تک کس کے پاس تھی؟ کہ عبد الدار کے بیٹوں کے پاس. عبد الدار کے بیٹوں میں سے کون؟ طلحہ ابن ابی عثمان، بڑا مشہور نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہہ دیا نا بھائی جان چھٹی، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہاں بھائی بھولے سے رہ جاتا تو مصیبت ہو جاتی ہے ہماری، صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے نا جناب؟ وہ کس کے پاس؟ کائن کے پاس، ان حضرت کے پاس. تو آپ نے کیا کہا؟ اسی کے پاس رہے گی، کیونکہ میرے جد اعلیٰ قصی نے اس کے حوالے کی تھی بنی عبد الدار کے، اس نے پورے قبیلوں کو ان کے حضور کے یعنی ان کے دل میں جگہ پیدا ہو گئی، یعنی حضور نے ہمارا حق ہمیں دیا. کہ نہیں چابی انہیں کے پاس ہے. کیوں؟ چابی ہونے سے فرق تھوڑی پڑتا. دیکھیے حضرت طلحہ ابن ابی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس ابن عبد المطلب، ہم تو ان کو سلام اللہ علیہ کہیں گے، جو کہنا ہے کہہ لو بھائی، اب یہاں پہ کوئی بارگیننگ نہیں ہے، سودے بازی نہیں ہوگی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ان دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، کیونکہ رفادہ سقایہ کس کے پاس تھا؟ جناب عباس کے پاس. اور کعبے کی چابی کلید بردار کون تھا؟ حضرت طلحہ ابن ابی عثمان، وہ تھے کلید بردار. ان کے بعد خانہ کعبہ کی چابی، چابی تو میرے پاس ہے، گھسنے نہیں دوں گا کسی کو، میں تالا لگا دوں نہیں آؤں گا، دوسرے دن جاؤ جو کرنا ہے کر لو، چابی ہمارے پاس ہم نہیں آنے تھے. وہ کہتے تھے رفادہ سقایہ سارا سال جو آتے مہمان، ان کی مہمان نوازی میرے سپرد ہے، ان کا کھانا پینا پانی پلانا یہ سب، پانی پلانا بہت بڑا، پہلی مجلس بتا چکا نا کتنا بڑا کام ہوتا تھا، پانی پلانا بہت بڑا کام، کھانے سے زیادہ پانی کی اہمیت تھی وہاں. کہا وہ میرے ذمے، بحث ہو رہی تھی علی آ گئے. یہ سورہ توبہ کی جو آیت ہے اس کی تفسیر میں ہے یہ ساری بات، یہ پورا واقعہ ہے. علی آ گئے، روک لیا دونوں نے، علی فیصلہ کیجئے. کیا فیصلہ کروں بھائی؟ کا فیصلہ کیجئے. یہ کہہ رہے کہ میرا رتبہ افضل ہے، میں کہہ رہا ہوں میرا رتبہ افضل ہے. کیوں بھائی؟ آپ دونوں میں کیا فضیلت ہے؟ علیہ ابن ابی عثمان نے فرمایا کہ میرے پاس کعبے کی چابی ہے، میں کلید بردار ہوں خانہ کعبہ کا. عباس کہہ رہے علی فیصلہ کرو، خود تم دیکھو، رفادہ سقایہ ہزاروں حاجیوں کا سارا سال انتظام کرتا ہوں، ये मेरे सुपुर्द है, किसको फजीलत है? मौला अली ने तीसरी बात कर दी, उन्होंने कहा तुम दोनों पर मुझे फजीलत है। क्यों? जब तुम ईमान नहीं लाए थे मैं लाया था, जब तुमने हिजरत नहीं की मैंने की थी, जब तुमने जिहाद नहीं किया मैंने किया था। अब जनाब झगड़ा बढ़ गया, हुजूर की खिदमत में आ गया केस, पैगंबर की खिदमत में हाजिर हो गया, हुजूर ये तो हम लड़ रहे थे, बीच में अली भी आ गए, भाई किस बात का झगड़ा है? का झगड़ा ये है कि इनके पास चाबी है, इनके पास रिवादा सिखाया, अली के पास तो कुछ भी नहीं है, आज भी कुछ नहीं, कल भी कुछ नहीं था, वो खादिमुल हरमैन शरीफैन बने बैठे हुए, वो खायनुल हरमैन खादिम बने के बैठ गए, उनके पास सब कुछ है, मक्का भी है मदीना भी है कि नहीं है? हाँ तुम्हारे पास सब कुछ है, हमारे पास करबला काफी है, समझ गए? बस आइए चलिए, तो एक जुमला था नुबला मोहतरा जो मैंने किया, तो खैर वो मुकदमा आ गया, हुजूर ने वक्फ किया, क्या फौरन फैसला नहीं सुनाना भाई, आने दो वही को आने दो, और जब वही आई तो फैसला हो गया, अजाल तुम शिकायत अल हाथ जवा इबारत मस्जिद हराम कबाना वना बिल्ला, क्या तुमने ये समझ लिया कि पानी पिलाना, जमजम पे कब्जा कर लेना और काबे का इंतजाम कर लेना, चाबी रख लेना, उनके बराबर हो सकता है? उस शख्स के बराबर जो ईमान लाया, जिसने हिजरत की, जिसने जिहाद किया, कभी भी ये उसके बराबर नहीं हो सकते। सलवात भेजिए, सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, बात हुई वैसे, चाबियां होना कमाल थोड़ी है, मनसब होना कमाल थोड़ी है, कमाल यह है कि अल्लाह की राह में कुर्बानियां किसने दी, अल्लाह की राह में लड़ा कौन, जख्म लगाए किसने, जख्म खाए किसने, फतुहात किसके हाथ से हुई, माले गनीमत किसकी तलवार का सदका, आज तक खा रहे हैं वही सदका। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, अब बस अब यहां से जहन जाने लगा था मेरा जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैह की दौलत की तरफ, लेकिन फिर सही, क्योंकि फिर मजमून मेरा जो ना उधर रह जाएगा, जी बहुत चाह रहा था, लेकिन बहरहाल इस बीबी की याद आ गई, एक दुरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर जनाबे खदीजतुल कुबरा की दाद, मोहम्मद। अब आइए वापस आपको लेके जाए अब्दुद्दार को चाबी देने का, मैंने हिकमत बता दी कि आज तक वो चाबी वहां है, वक्ती तौर पे उनके बंदों को गिरफ्तार कर लिया, कोई गलत वो अलग बात है, लेकिन है उन्हीं का हक, क्योंकि कुसैन ने उनके हाथ में दी चाबी, अब्दुद्दार के अपने बेटे किसको दी, अब्दुद्दार को चाबी दी। जब ये आ गया इनके पास, मुहकम हो गया आपका कब्जा, अब आपने कुरैश क्यों लकब बना, वो जो फहर की औलाद बिखरी हुई थी इस जमाने में बनी खजा के, उस सारी औलाद को समेटना शुरू किया, क्या करना शुरू किया, सबको तकर्रुश जमा करना शुरू किया, सब का तकर्रुश किया, जब सबको जमा करना शुरू किया तो इनका लकब पड़ गया कुरैश, और उमूमन लोग यही कहते हैं कि कुरैश इन्हीं का लकब है, लेकिन मैं आपको बता चुका कि तीन अफराद हैं, तीसरी हस्ती ये है, मशहूर ये ज्यादा हुए, लेकिन तारीख में उन दोनों हस्तियों का लकब भी, और नजर इब्ने कनाना का तो पूरा वाकया वो मैंने बताया ना, कुरैश मछली का समझ है, वो सारा मौजूद है सीरत की किताबों में भी, जहां भी तफसील से वाकयात हैं हुजूर के अजदाद के, चाहे वो अनसाबुल अशराफ हो बिलाजरी की, चाहे ये किताब हो सीरत हलबिया हो, सब में ये वाकयात तफसील से आपको मिल जाएंगे, जो किताबों के नाम ले रहा हूँ सबके उर्दू तर्जुमे माशाल्लाह मार्केटों में मौजूद हैं, लेकिन ये भी मुझे मालूम है कि आप खरीदेंगे नहीं, क्योंकि कई कई जिल्दों में महंगे बहुत हैं, सिम सस्ती है, उसका कार्ड भी सस्ता है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, चलिए अब इसीलिए लोग आके जो मर्जी कह के चले जाते हैं, उन्हें पता है कौन सा घर जाके किताब देख रहा है ना, उनको मालूम है नहीं देखेगा किताब, जिसकी मर्जी नाम ले दो, वो हमारे एक दोस्त क्या करें, हर किस्म के लोग होते हैं, तो एक शहर में शहर का नाम नहीं लेंगे, बहुत बड़ा जलसा हो रहा था उसमें वो भी तकरीर करते, उन्होंने अजीब और गरीब किस्म की किताबों के नाम लेने शुरू कर दिए, और रिवायत भी कुछ अजीब और गरीब पढ़नी शुरू कर दी, वो रिवायत ऐसी थी जो जिनका कोई सर पैर नहीं, मैं भी परेशान, मिल गई कहाँ से पढ़ रहा है ये आदमी, क्या कर रहा है। खैर जलसा ख़त्म हुआ जू तू करके, हम बैठे गाड़ी में, वो भी बैठे हुए थे गाड़ी में, इतने में एक जवान ने मुंह अपना खिड़की से डाला, गिराओ शीशा, कहता मौलाना, उनके तो खिताब करे, ये जो आपने पढ़ा ये कहाँ से पढ़ा? मौलाना ने जनाब एक सांस में कोई 6-7 किताबों के नाम ले दिए, बिहारुल अनवार 45वीं जिल्द, مصابیح الانوار فلاں جلد وسائل الشیعہ فلاں، جتنے کتابوں کے نام یاد تھے حضرت کو انہیں سارے کہہ دی جاؤ. وہ بیچارہ ڈر کے بھاگ گیا، اتنی ساری کتابیں. تو میں نے کہا مولانا یہ جتنی کتابوں کے نام لیے ان میں کسی میں بھی نہیں ہے. کہتے جب میں نے نہیں پڑھی اس نے کہاں سے پڑھی ہوں گی. یہ سمجھتے ہیں وہ لوگ آپ کو، آپ پتہ نہیں کیا کس دنیا میں رہتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں پتہ ہے انہیں کون سا جا کے گھر میں کتاب دیکھنے، وہ اتنا ٹائم نہیں ہے، مجلس میں آگے بڑی بات ہے، ڈیڑھ گھنٹے بیٹھے گا، یہ کہا جائے گا کتاب خانے میں کتاب. یہ میرے سامنے کردار زندہ ہے، اور یقیناً وہ یوٹیوب پہ سنیں گے تو بڑے ہنسیں گے، خوش ہوں گے کہ چلو مولانا نے کم سے کم میرا نام نہیں لیا. میں نام نہیں لے رہا ان کا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ بڑی دیدہ دلیری سے مجھ سے کہتے ہیں جناب میں نے نہیں پڑھی، یہ کہاں سے پڑھے گا، اس کو کیا پتا کہاں ملیں گی کتابیں. چلو اللہ مالک، ہمارا کام ہو گیا نا، بس ٹھیک ہے. ایسا نہ کریں نا، ایسا نہ کریں جس کی جو مرضی آ کے پڑھ کے چلا جائے. نہیں، کچھ تو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے نا. دیکھیے کبھی کبھی غلط فہمی میں بھی ہو جاتا ہے نا، میں بھی غلط کہہ سکتا، انسان ہوں، معصوم تو نہیں ہوں نا، تو میری بھی اصلاح ہو جاتی کہ نہیں بھائی اس کتاب میں نہیں تھا، یہ فلاں کتاب میں تھا. ہاں کتابوں میں ہے، ممکن ہے کتاب کا نام غلط ہو سکتا ہے نا، مجھ سے کیوں نہیں ہو سکتا، بڑوں بڑوں سے ہو جاتا ہے. جو بھی غیر معصوم ہے اس سے اس خطا کا امکان موجود ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، شرمانا بھی نہیں چاہیے انسان کو فوراً. بہترین انسان وہ ہوتا ہے کہ جو برملا اپنی غلطی کا اعتراف کر لے. ڈھیٹ ہوتا ہے وہ جو کہ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ غلطی پر ہے اپنی غلطی تسلیم. یہ عذاب ہے، یہ مصیبت ہے کہ غلطی ثابت ہونے کے باوجود بھی غلطی تسلیم نہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی بھی اس بات پہ مصر ہو کہ نہیں یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، آپ غلط ہیں. چلو بھائی ہم غلط، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دیکھیں نا انسان ہے، اور کئی بار میرے ساتھ ایسا ہوا اور میں نے ممبر سے آ کے بالکل اعتراف کیا، بتایا لوگوں کہ ہاں بھائی ہو جاتا ہے غلطی، انسان ہے. ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہمیں ساری دنیا کا علم حاصل ہے؟ ہم نے کب دعویٰ کیا؟ ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. یہ تو معصوم کو حق ہے کہ بس وہ ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے، اور کس کو یہ حق ہے؟ خیر جناب، تو یہ دونوں روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اب جب ان کا کنٹرول ہو گیا تو اب انہیں تقرش جمع کرنا شروع کیا، تو ان کا لقب ہوا قریش. سب سے مشہور قریش ہے، یعنی جب قریش کہا جائے تو سیدھا ذہن جائے گا کہاں، قصی ابن کلاب. منتظم تھے، اجابہ وہی چابی. یہ عہدہ کس کو دے دیا؟ اپنے بیٹے عبد الدار کو، تم یہ سنبھالو گے. پھر حاجیوں کے لیے رفادہ اور سقایہ دو محکمے اور قائم کیے، کھانا کھلانے کا اور پانی پلانے کا انتظام. اب شعبے بنا رہے ہیں نا، شعبے بننا شروع ہوئے. کیسے نہیں، ہبڑ دبڑ کچھ نہیں، انتظامات تقسیم کرو. عبد مناف کو دیا رفادہ اور سقایہ، اسی لیے بنی ہاشم کے ورثے میں آیا تھا نا، رفادہ اور سقایہ یہ دونوں، جن میں پھر اور تقسیم ہوئی تھی. جناب عباس کے پاس سقایہ گیا تھا یہ رفادہ، اور جناب ابو طالب کے پاس رفادہ سقایہ، بال دونوں بھائیوں کے درمیان یہ ایک ایک تقسیم تھی. یہ تھا. پھر اس کے بعد خانہ کعبہ میں پہلے اطراف میں کچے گھر بنتے تھے، پکے گھر نہیں بنائے جاتے تھے. جب آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی، یہ وہ شخص ہے، کیونکہ خانہ کعبہ بارشوں سیلابوں کی وجہ سے اچھا خاصا بوسیدہ ہو گیا تھا، تو انہیں پھر دوبارہ کعبے کو تعمیر کیا. یہ چھٹی یا ساتویں تعمیر ہے کعبے کی جناب ابراہیم کے بعد مکمل، چھوٹی موٹی مرمت ہوتی رہتی تھی، مکمل تعمیر کی بات کریں تو قصی نے دوبارہ سے تعمیر کیا، اور پہلی بار کھجور کی ٹہنیوں کی چھت ڈالی، خانہ کعبہ کے اوپر چھت بنا دی. کھجور کی ٹہنیاں مضبوط ہوتی ہیں، ان سے وہی وہاں اویلیبل بھی ہوتی تھیں اس علاقوں میں، تو ان سے چھت ڈال دیا آپ نے، خانہ کعبہ کو پکا بنا دیا، دوبارہ سے نیا بنا دیا، پکا گھر بنایا. پہلا حجر اسود کے سامنے دور مسجد الحرام کی حدود سے باہر ایک گھر بنایا، پکا گھر، اور اس کا نام رکھا دار الندوہ. یہ چوتھا شعبہ قائم کیا ندوہ کا. اس ندوہ گھر میں یہ تھا کمیونٹی سینٹر، تمام مکے کے لیے فری کر دیا. کوئی تقریب کرنا ہو، شادی بیاہ کرنا ہو، فاتحہ کرنا ہو، مطلب فاتحہ سے مراد وہ مرنے کے مراسم تو ہوتے تھے نا، فاتحہ نہ صحیح اور کسی نام سے ہوتے ہوں گے، ایک ذرا بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب یہ تو ہے، اب میں اس میں دیکھیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، کسی کو بھی نہیں ٹوکتا ہوں، کیونکہ میرا بیان ایسا ہوتا ہے کہ ایک دو افراد کو نیند آنے لگتی ہے، جب آنے لگتی ہے تو میں انہیں اٹھانے کے لیے آپ سے بلند آواز سے صلوات بھجواتا ہوں. बोला ला आइए, कोई कसूर नहीं, मैं किसी तरफ नहीं देख रहा, इसीलिए ताकि मेरे किसी की भाई की इज्जत नफ्स को आंच ना आ जाए। होता है ना, बयान मेरा ऐसा ही है, मैं क्या करूं भाई, कहां से लाऊं, अब तो अब ये बदल भी नहीं सकता अंदाज, पढ़ते पढ़ते 40 साल हो गए, आज तक मुझे तकरीर करनी नहीं आई, सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। दारुल नदवा बना दिया कि अब यहां आओ अपने महाराज, तो उनको बड़े खुश हुए मक्के के लोग, ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया, हम इधर उधर जाते थे, पहला कम्युनिटी सेंटर बना दिया, आओ यहां। और उसके बाद वही कम्युनिटी सेंटर बना काहे के लिए, फैसलों के लिए, जब कबाइल आपस में झगड़ते थे, किसी बात पे झगड़ा हो जाता था, नदवा में जमा होते थे, तो नदवा पूरा एक शोभा बन गया, मसाइल हल करने का मरकज बन गया, कि बड़ो नहीं बात, यहां आके बैठ जाओ सारे सरदार, यहां आके बात किया करो, और कुसै सबके सरदार बन के बैठते थे, आखिरी फैसला कुसै का फैसला होता था, जब वो आपस में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते थे तो कुसै का फैसला मानते, जो कुसै फैसला करेगा वो नदवा का महकमा, तो कितने महकमे हो गए, इजाबा रिफादा सिकाया और नदवा, आखिरी बनाया लिवा, ये पांच शोबे मशहूर हैं, लिवा यानी जब कुरैशियों की जंग किसी के साथ होती थी तो ये सारे अहले मक्का का परचम एक होता था, आपस में लड़ते थे तो अलग अलग, लेकिन बाहर का कोई आता था तो लिवा परचम दिया जाता था किसी को, तो ये परचम किसी एक के साथ मखसूस नहीं होता था, क्योंकि कबीलों के आपस में झगड़े भी तो होते थे, तो जो बहादुर तरीन किसी भी कबीले का फर्द होता था उसे लिवा दे दिया जाता था, ये तो अब्दुल मुत्तलिब के बाद मखसूस हुआ कि अलमबरदार होना किसे चाहिए, है ना, वहां से फिर अलमदारी का एक खास शोभा शुरू हुआ, फिर हर कसो नाकस के बात नहीं थी इस अलम को उठाना, फिर यह अलम मखसूस हो गया था अबू तालिब के बेटों के साथ, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक मिलकर सलवात भेजिए बुलंद आवाज से, आइए ये पांच शोबे काबे से मुतालिक कायम किए और ये सबको तकसीम किया बराबर से, कि हिस्सेदार तुम सब इसमें शरीक हो, माविन बनो। अब मक्के को एक निजाम मिला और आप ये देखिए कि आज तक वो पांच शोबे किसी ना किसी शक्ल में वहां काम कर रहे हैं, और हुजूर ने भी उन महकमों को खत्म, जिसके पास रिफायदा था रहने दिया, जिसके पास सिकाया था रहने दिया, जिसके पास लिवा था, वो बाद में चेंज हुआ ना, जब मदीने गए तो फिर हुजूर अलम दिया करते थे, वो मक्के का अलम तो खत्म हो गया, वो लिवा तो खत्म हो गया, लेकिन अलम जरूर रहा, तो ये छांट के दिया जाता था कि उसको दिया जाए जिसके बाजू कलम हो जाए मगर अलम को गिरने ना दें। और आप जानते हैं कि जनाब जाफर तैयार का लकब तैयार पड़ा क्यों था, ये वो है कि शहादत के बाद इसे लकब मिला, जिंदगी में थोड़ी, जब बाजू कलम हो गए थे तो आपने लकब दिया था ना कि जाफर, जन्नत में अल्लाह ने दो बाजुओं की जगह दो पर दिए जिनकी जिनके वसीले से वो जन्नत में परवाज करता है, तो जब से आपका लकब पड़ा जाफर है, ये वो लकब है जो शहादत के बाद मिलता है, शहादत से पहले किसी को नहीं मिलता। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद का। अब ये कुसै तक बात आ गई कि कुसै ने पूरा निजाम दुरुस्त कर दिया, संभाल लिया, कुसै के बाद उसके बेटे अब्द मनाफ सरदार करार पाए, हैं सब बेटे लेकिन अब्द मनाफ का एक मकाम, अब्द मनाफ का बेटा हाशिम, हाशिम के बारे में कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हाशिम का बेटा अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे फिर आप जानते हैं सारे, उनका जिक्र आ जाएगा। अब आइए जरा आगे का बता दें, हमला कब हुआ, अब्दुल मुत्तलिब का हमला तो हम पढ़ेंगे ना, अब्राहा का हमला जो जनाब अब्दुल मुत्तलिब के जमाने, वो तो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आ जाएगा कल, नहीं तो परसों तो जरूर आ जाएगा, जिंदगी शर्त है। लेकिन अब आइए आगे, वरना वो बातें रह जाएंगी। इस्लाम आने के बाद पहला हमला कब हुआ काबे पर, हुजूर ने कितना एहतमाम किया फतेह मक्का के वक्त कि जंग ना हो, जंग ना हो, जंग, काबे का एहतराम बाकी रहे, लिहाजा सुलह हुदैबिया के मौके पर भी काबे के एहतराम को बचाया फतेह मक्का के वक्त, ऐलान करके जो कलमा पढ़ लेगा बच जाएगा, जो फला के घर में चला जाएगा बच जाएगा, जो फला जगह होगा वो बच जाएगा, सब अपने घरों में रहो, जो अपने घर में रहेगा वो भी बच जाएगा, ऐसा हुआ ना, यानी खुरेजी नहीं होने दी, तीन चार अफराद को बस इस्तिस्ना किया कि ये काबे के खिलाफ से भी चिमटे हो तो इनकी गर्दन उड़ा देना, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, उनके नाम हमारे बिरादरान बड़ी अच्छी तरह से ले लेते हैं, मुसीबत यह कि मैं नाम लूं तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, और तुम्हारे अपने आदमी आके टीवी पे बता रहे होते हैं कौन कौन था, फिर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती। कहते नहीं, हमारे वाले को कहने दो, आप नहीं कहो, आपके मुंह से अच्छा, हमारे मुंह से अच्छा नहीं लगता तो चलो भाई हम भी नहीं बताते, बस एक का नाम ले देते हैं, अकरमा इब्ने अबू जहल। अब तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये फरार हो गए, लेकिन ये बता दें आपको कि इसका नाम क्यों लिया हमने, फरार हो गया अकरमा इब्ने अबू जहल। हुजूर ने इसकी बीवी फातिमा वो ले आई, उसका नाम भी फातिमा था, वो ईमान ले आई। जब ईमान ले आई तो हुजूर की खिदमत में आ गई। अब आके कहती है कि अपने शोहर के लिए अमान चाहती हूँ, जान बख्शी। हुजूर ने सर झुका लिया, क्या करें, ईमान ले आई है और हुजूर जानते हैं कि सच्चा ईमान लाई है, क्या करें। हुजूर ने कहा अच्छा ठीक है, अगर कलमा पढ़ लेगा माफ़ कर दूंगा। एक मुसलमान, एक मोमिना अमान तलब कर रही है अपने शोहर के, माफ़ कर। ये जद्दे में कश्ती पे सवार हो रहा था जब इसकी बीवी पहुंची है वहां, फरार हो कश्ती में, आवाज दी वापस आ जा, मैंने अमान ले लिए। तो उसने पूछा किससे अमान ली, कहा अल्लाह के रसूल से तेरे लिए अमान ला चुका। जब बराह रास्त कहा, फिर वापस आ गया, हाँ वो अमीन है, वो सादिक है, अगर तूने उससे अमान लिए तो मैं अमान लूं। वापस आ गया, ईमान ले आया। जब आ रहा था, सुनिए तवज्जो से, शिया हो या सुन्नी हो सब सुनो, जब आ रहा था, अबू जहल का बेटा है जिसके कत्ल का अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था, जब वापस आ रहे थे तो अल्लाह के रसूल ने तमाम सहाबा से कहा देखो खबरदार, अकरमा आ रहा है अबू जहल का बेटा, उसके सामने उसके बाप को बुरा भला ना कहना, सीखने वालों के। अबू जहल जंगे बद्र में सरदार था, मारा गया, खड्डे में फेंका गया, कुएं में फेंका गया जनाजा, उसका सबसे बड़ा दुश्मन, अल्लाह के रसूल का और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था अपनी जिंदगी में। कह रहे खबरदार, बुरा भला कहने को मना नहीं किया, कहा उसके सामने बुरा नहीं कहना, उसका बाप है, तकलीफ होगी। देखा आप, यह है सीरत जो किताबों में लिखी हुई है, अमल में कुछ और है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। काश ये सारी उम्मत मोहम्मदिया इन चीजों से कुछ सीख लेती, कि भाई ना कहो बुरा भला एक दूसरे के मोहतरम हस्तियों को, मोहतरम अकवान, ना कहो बुरा भला, क्या मुसीबत है भाई। मैं शिया इसीलिए हूं कि अली के दुश्मनों को नहीं मानता, इसमें मैंने कोई तकैया किया नहीं किया, इसका यह मतलब कब है कि मैं दूसरों को बुरा भला कहना शुरू कर दूं। एक मुआशरा है दोस्तों, उस मुआशरे में रहते हैं, यही हमारा दूसरों को भी पैगाम है, भाई आप जिसको मानना है मानो, लेकिन ऐसा तो ना करो कि बड़े बड़े मुनाफिकों को, बड़े बड़े दुश्मनान दीन को, दुश्मनान रसूल को, मरवान जैसों के लिए तुम चाहो कि हम उसको भी मौजिज मान लें। वो मरवान जिसको उसके बाप के साथ मदीने से बेदखल किया, अल्लाह के रसूल ने निकाल दिया, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे वापस लाता, शेखैन के दौर में भी वापस नहीं लाया गया, न पहले दौर में, ना दूसरे दौर में, तीसरे दौर में वापस लाए गए। तो अजीजों, अब तुम ये चाहो कि हम मरवान को भी अच्छा भला कहें तो भाई ये नहीं होता, जबी तो हम शिया हैं, हम उनको नहीं मानते, हम किसी हालत में नहीं मानते, हम किसी को भी अली से अफजल नहीं मानते मोहम्मद के बाद। भाई अकीदा है ना, जबी तो हम शिया हैं, हम आपकी सारी बातें मानते चले तो भाई हम फिर शिया कहां रहे। 1400 साल से हमारी मुकावमत इसी बात पर है, इस पे कोई सौदेबाजी, इसी नारे पे मर रहे हैं, इसी पे कट रहे हैं, इसी पे शहीद हो रहे हैं। तो ये भूल है दुनिया की कि वो हमसे हमारा अकीदा छीन लेगी, नहीं, हमारे पास एक मेयार है जो अल्लाह के रसूल ने दिया है, अल हक मा अली व अली माल हक, या अली माल हक वल हक मा अली, या आपकी किताबों में है सरकार, मेयार अल्लाह का रसूल देके जा रहा है, आप हमसे कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं करो, हमने कह दिया ना अली हक के साथ है, हक जब अली के मुकाबले पर आया बात खत्म हो गई ना। तो भाई बुरा भला नहीं कहते हम, लेकिन ये क्यों कहते हो कि नहीं इनको ऐसा मानो, इनके बस क्यों माने भाई, किस लिए माने, हम नहीं मानते रसूल के बाद हम सबसे अफजल किसे मानते हैं, मौला अली को। ये हमारा अकीदा है भाई, पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो, आप अपने अकीदे पर रहिए, हमें अपने अकीदे पर रहने दीजिए, ठीक है ना, दुनिया के सामने अच्छा पैगाम जाएगा, जैसे पहले रह रहे थे प्यार मोहब्बत से इस मुल्क में सारी दुनिया में, वैसे रहते रहो, लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं, ना तुम हमें खत्म कर सकते हो ना हम तुम्हें खत्म कर सकते हैं, भाई सीधी बात है, अब तक देख लिया ना क्या हुआ लड़ाई का अंजाम, सिवाय इस शहरों की बर्बादी के, इस मुल्क की बर्बादी के कोई नतीजा निकला है तो बता दो, कोई नतीजा निकला, खैर लड़ाने वालों को भी ये बात सोचनी चाहिए, मगर वो सोचते नहीं है। सलवार भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए, बहरहाल मैं आपको फिर काबे की तरफ लेकर जाऊं। पहली बार इस्लामी तारीख में, इस्लामी तारीख यानी जब इस्लाम आ गया, यानी मुसलमानों की तारीख, इस्लामी तारीख को तो छोड़ दीजिए, मुसलमानों की तारीख में पहली बार काबे पर चढ़ाई की किसने? मुस्लिम बिन अतबा। किसने भेजा चढ़ाई करने के लिए? यजीद मलून ने, 64 हिजरी। 64 हिजरी में जब अब्दुल्ला इब्ने हंजला गसील मलाइका की कयादत में मदीने में बगावत हुई और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर मक्के में हाकिम थे, तो उसने लश्कर भेजा और जिसको बुलाया मुस्लिम बिन अतबा को, सफाक तरीन दरिंदा था अपने जमाने का, कहा कि तुझे आजाद करके भेजा हूं, जो चाहे सुलूक करना मदीने मक्के वालों के साथ, मगर छोड़ना किसी को नहीं। खैर वाकिरा कभी तफसील से पढ़ चुके। ये आया, इसने मदीने को ताराज किया पहले, और ऐसा ताराज किया था कि 3 दिन के लिए इसने अपने लश्कर के लिए मदीने को हलाल कर दिया। कोई भी तारीख पढ़ लीजिए वाकिरा की, कहीं हर्रा है, कहीं हिर्रा, कहीं हुर्रा, कोई मसला नहीं, वो जेर जबर का फर्क है जगह जगह। तो वाकिरा में क्या किया इसने? मुबाह कर दिया मदीना 3 दिन के लिए मुबाह लश्कर पे। और जो तबाही और ताराजी फैली, हमसे ना पूछो, जाके अपनी तारीखें पढ़ो। ये तुम्हारे चैनल पे बैठ बैठ के तुम्हारे खुद उलमा बता चुके, हम तो कहते थे 1200 सहाबा मैंने अपने कानों से सुना, वो किरदार भी जिंदा है आंखों से देखा, जिन्होंने चैनल पे बैठ के कहा था कि इस वाकिरा में 1700 सहाबा और ताबेईन को कत्ल किया गया। हमेशा मेरे एक सवाल का जवाब नहीं होता किसी के पास, बस इतना बता दो, सहाबा को बुरा कहना बड़ा जुर्म है या कत्ल कर देना बड़ा जुर्म क्या है? लेकिन नहीं नहीं नहीं, सब कुछ जानते बूझते अपनी आंखों पे गफलत का पर्दा डाल के रखते। मदीना ताराज किया, आगे गया, क्योंकि उसने कह दिया था कि तुझे मक्के पर भी चढ़ाई की, मदीने को पूरा बर्बाद करके गया। और ये तो एक पहलू, एक बात रह गई, 9000 तक की तादाद लिखी है, लेकिन मैं कहता हूं मुमकिन है मौरिख से गलती हो गई हो, भाई मुबालिगा हो गया हो। किसकी तादाद? वो खवातीन मदीने की, सहाबा के घरों की खवातीन, ताबेईन की बेटियां, 9000 की बेहुरमती की गई। अपनी तारीख पढ़ लेना, समझ गए मेरी बात? ये आपने लिखा है सरकार, हमारी बात को छोड़ दीजिए आप, और फिर उसके बाद बजिद हो कि तुम्हारा अमीर है वो, तो तुम्हें ये अमीर मुबारक हो। हम जो दुआ करते हैं जब ये नारा लगता है, हमें कोई तकलीफ थोड़ी होती, अमीर यजीद, अमीर यजीद, हम तो दुआ करते हैं परवरदिगार आलम हमें हुसैन के साथ ले जाना, इसको यजीद के साथ। अच्छा फिर वही बात, जब ये दुआ करो तो उसे आग लग जाती है। अरे भाई तेरे लिए दुआ करें, तू कह रहा है मेरा अमीर है, फिर तुझे परेशानी क्या है? एक मुफ्ती साहब के साथ 5-6 बैठे हुए थे एक चैनल पे, जो वफा होता है उसमें सब बातें हो रही थी, तो बातें होती, मैंने कहा भाई हम तो एक फार्मूला जानते हैं, आप इतना दिफा कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूं कि परवरदिगार आलम हश्र के दिन आपको आपके अमीर यजीद के साथ उठाए, जहां वो जाए वहीं वो चले जाए। और हम ये दुआ कर रहे हैं, आप आमीन कहिए कि परवरदिगार आलम हमें हुसैन के साथ उठाना। अब भिन भिन आ गए एकदम से, जनाब गुस्से हो गए, ये आप कैसी बातें करें? मैंने कहा अजीब है, मैं तो समझा था आप खुश हो जाएंगे, तो जब आपको खुद उसकी शफात का एतबार नहीं है। भाई सीधी सीधी बात कीजिए ना, कि आप हमारे बुग्ध में सब कहते हैं, मोहब्बत आपको किसी से नहीं, अगर आपको मोहब्बत होती तो अपने हाथों से हैवानों पे उनका नाम लिख के ना छोड़ते झगड़े कराने के लिए। समझ में आई बात? अभी 2 साल पहले एक शहर में फिर हुआ था सिंध के यही वाकया, और ये आपके झंग में भी हो चुका, इधर भी हो चुका, तो नहीं कहा मोहब्बत होती तो कभी आप ये गंदी हरकत ना करते, सिर्फ इसलिए कि शियों पर हमला हो जाए, शियों से झगड़ा हो जाए। 1400 साल से हमले करते करते भी तसल्ली नहीं हुई तुम्हारी कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ता? तुम्हें नहीं मालूम हमारी मुकावत कल? खैर ये मुस्लिम बिन अतबा मदीने को ताराज करके चला, तो ऐसी बीमारी में मुब्तिला हुआ कि चीखता रहता था, ना नींद आती थी ना कुछ। मक्के के रास्ते में वासिले जहन्नम हो गया, मदीने को ताराज किया था, तो कमान किसके हाथ में आई? हसीन इब्ने नमीर, याद आ गया, वही हसीन इब्ने नमीर करबला वाला, इसके हाथ में कमान आ गए, हसीन इब्ने नमीर की कमान हाथ में, ये पहुंच गया, इसने मक्के का मुहासरा कर लिया, पहला हमला इस्लाम आने के बाद काबे पर पहला हमला, हर तारीख किसी एक तारीख का नाम ही नहीं लेता, हर जगह लिखा है 64 हिजरी के वाकया। मुहासरा किया मक्के का और इसने मिंजनीकों से पत्थर बरसाने शुरू किए, हो गया, मर गया। इसे मुहासरा उठाना पड़ा, वापस आया। ये वही इसकी वापसी है कि जब वापसी में इसकी मुलाकात हुई है बेसर सामानी के आलम में, दौड़ रहा है, भाग रहा है, आधा लश्कर पहले, आधा लश्कर देखे, जल्दी पहुंचो दमिश्क, यहां से निकलो, हिजाज से निकलो, क्योंकि मालूम था मदीने में क्या करके आ रहे हैं, ऐसा ना हो लोग रास्ते में हमारे ऊपर टूट पड़े। हालांकि लोगों में इतना दमखम नहीं था, लेकिन वो डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि लोग निकल के, बाहर निकल के अचानक हम पर सब पर टूट पड़े। उसी रास्ते में इसकी मुलाकात हुई थी किससे? सैयद सज्जाद। जब इसने पानी तलब किया था, इसने तहतुल हलक से अपने चेहरे को छुपा लिया था और खिदमत में हाजिर हुआ था इमाम, कहा कि प्यासा हूं मैं और मेरे साथी, आपने मशकीजों के मुंह खोलवा दिए, पिलाओ पानी, सबको पिलाओ। जब पानी वानी पी चुका, सैर हो चुका, उसके बाद मुस्कुरा के कहता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, फर्जंद रसूल आपने मुझे पहचाना नहीं, वरना आप मुझे सैराब न करते। इमाम जब से ये आया था ना, इसकी तरफ देख नहीं रहे थे, देख ही नहीं, रुख दूसरी तरफ करते थे और फिर मुझे थे पानी पिलाओ इनको, इसकी तरफ नहीं देखते थे। उस वक्त भी रुख आपका दूसरी तरफ था, लेकिन जब इसने ये कहा ना कि आपने मुझे पहचाना नहीं, अगर आप पहचान लेते तो कभी मुझे पानी ना पिलाते, सैराब ना करते। बस इस जुमले पे इमाम ने पलट के उसको देखा और पलट कर कहते हैं, ओ हसीन इब्ने नमीर, नाम लेके, तुझे ये गुमान है कि मैं तुझे पहचाना नहीं, क्या मैं अपने भाई अली अकबर के कलेजे को भूल सकता? यही था ना, एक नाम इसका है, इसी ने अली अकबर के कलेजे में बर्छी उतारी, भूल सकता अपने भाई अली अकबर के कलेजे को, भूल सकता, लेकिन सर वो तुम्हारा किरदार था। ये हमारे मनसब का तकाजा है कि हमारा कातिल भी प्यासा होगा तो हम उसकी प्यास बुझाएंगे, सैराब करेंगे। ये है अहले बैत का किरदार। अपने कातिल के साथ अली ने क्या सलूक दिया था, इसकी रस्सियां ढीली करो, इसे शरबत पिलाओ, जो शरबत अली के लिए आया था वो शरबत अपने कातिल को पिलाओ, इसके साथ कोई ज्यादती ना करो, जब तक मैं हूं, मैं बच गया इस जख्म से तो मैं फैसला करूंगा, वरना उसके बाद मेरे जाने के बाद वही एक जर्ब से इसका खात्मा करना। ये अलग बात कि एक जर्ब से खात्मा हुआ था, लेकिन लोगों ने नहीं छोड़ा, लोग इसका कुश्ता जो था वो छीन के ले गए थे और जला दिया था इब्ने मुलजिम का, समझ में आई बात? तो ये अहले बैत का किरदार कि जहां भी हो सका उस आलम में भी लोगों की मदद की, लोगों की हाजत बराबरी की, ये था अहले बैत। और इनका किरदार क्या था कि अगर किसी बच्ची ने पानी मांगा तो पानी दिखा के बहा देते, ऐसे तड़पाया था आले रसूल को कि उन बच्चों के सामने पानी लाते थे और रेत पर उंडेल देते थे। ये हाल कर दिया था हुसैन के बच्चों का। क्या किया था उनके बच्चों के साथ? अगर कोई तड़प के बाबा को पुकारे तो उसे तमाचों से मारा जाता है। मेरी कुछ बहनों ने हुक्म दिया है कि आज जनाब सकीना के मसाइब पढ़ो, कोशिश करते, कोशिश, हक तो अदा नहीं हो सकता है, कोशिश। हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना कहां से शुरू करो, वहां से शुरू करो जब ये बच्ची जुलजना के सुमो से लिपट गई, मेरे बाबा को ना ले जा, जो गया वो वापस नहीं आया, कहां से शुरू, वहां से जब खेमों को आग लग गई, ये बच्ची घबरा के खेमों से बाहर निकली है, शिमर ने देखा मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं क्या करूं, एक लफ्ज है जो मुझे पढ़ना है, अगरचे कि मेरी हिम्मत नहीं होती ऐसे अल्फाज अदा करने की, मगर क्या किया जाए, इस बच्ची के बाप में बालों से पकड़ा था बच्चा। पहले तमाचे मारे, उसके बाद कानों के दूर छीने, उतारे नहीं थे, छीने। जब गोशवारों को खींचा है, छीना है, बच्ची के दोनों कान लहू लहान है, यह है सकीना। इसी आलम में दौड़ रही थी कत्लगाह में, अपने बाबा का सीना तलाश कर रही थी। जानते हैं ना शाम गरीबा में जैनब कहां से लाई थी इस बच्ची को, बाबा के सीने से। जब करबला से अस्कीर चलने लगे, वे पालानों के ऊंट थे ना, पालान थोड़ी रखे, तो बड़ी खवातीन तो कोहान से तवाजुन बरकरार कर लेती थी बैठ, बच्चे कैसे अपना तवाजुन बरकरार कर। जब इस बच्ची को सवार कराया जाता था गिर जाती थी, नाके से गिर जाती थी, इन मलूनों ने रस्सी से बांधा। नफसुल महमूम की रिवायत है, और मैं फिर अर्ज करूं कि मैंने असल रिवायत नहीं पढ़ी, वो इतनी सख्त है कि मैं पढ़ नहीं सकता, बस मैंने एक जुमला कह दिया कि इस बच्ची को रस्सी से बांधा गया। इसीलिए तो शाम की राहों में जब ये रस्सी ढीली हुई होगी, बच्ची गिर गई। संभाला किसने था, इसकी दादी जहरा। इतना तकलीफ दे सफर करके, जिसमें कितने ही बच्चे शहीद हो गए, कितनी ही बीबियां नाकों से गिर गिर के अपनी जान दे बैठे, वो सफर करके ये 4 साल की बच्ची शाम पहुंची। मैंने अस्कर दिया 12 बच्चे थे, कितने बच्चे थे असीर, 12 चले, कितने थे 70 से ज्यादा। अर्ज कर चुका हूं पहले कि 64 के करीब बीबियां और बच्चियां नाकों से गिरी थी रास्तों में, जिनमें से कुछ की कब्रों के निशान हैं, कुछ की कब्रों के निशान नहीं है। जब पहुंचे थे यजीद के दरबार में, तो एक रस्सी से 12 असीरों को बांधा गया, किसी का हाथ, किसी का गला, किसी की कमर, किसी का पैर। तय किया दरबार का भी मसला, मरहला तय किया, शाम के दरबार को भी फतह किया, कभी फूफी जैनब ने, कभी इस बच्ची ने, यजीद को शर्मिंदा करके इस बच्ची ने भी शर्मिंदा किया। जिंदान में पहुंची, जब जिंदान में पहुंची तो अब बाबा की याद इसे सता थी। क्या करे वो सकीना, कैसे सोए वो सकीना जो सिर्फ बाबा के सीने पे सोने की आदी थी। दिन होता था जिंदान के दरवाजे पे बैठ जाती हो, आने जाने वाले मुसाफिरों को देखती रहती थी, शायद कोई करबला का मुसाफिर मिल जाए तो मैं अपने बाबा को सलाम ही भिजवा दूं कि बाबा जिस सकीना को आप खेमे में छोड़ के आए थे ना, उस सकी वो आपकी प्यारी सकीना शाम के जिंदा, तारीख जिंदा। जब रात तारीख होती थी तो बच्ची की घबराहट बढ़ जाती, अंधेरे से घबराती थी ये बच्ची, रोती थी, रोते रोते कहते कि नींद आ जाती थी, सो जाती थी। मैं कहता हूं कैसी नींद, रोते रोते गश में चली जाती थी। ऐसी ही एक रात आई, बच्ची रोते रोते गश में चली गई, मगर थोड़ी देर के बाद बेदार हुई और पहले से ज्यादा गिरिया। बाबा को याद करती है रोती, याद करती है रोती। मां ने आगे बढ़कर गले से लगाया, मेरी बच्ची कलेजा फटा जाता, ना रो ऐसे ना। बच्ची कहती है अम्मा मैं क्या करूं, अभी तो बाबा मेरे पास बैठे थे। जैनब ने अपनी आहोश मेरी बच्ची ना रो, जिगर छलनी हुआ जाता तेरे बैन सुन, तुम्हें अम्मा मैं क्या करूं, अभी तो बाबा मुझसे कह रहे थे सकीना हम भी तुम्हारे बगैर बहुत बेकरार, सकीना हमारे पास आ जाओ। भाई ने अपने पास बुलाया तेरी प्यारी बहन से, बस खामोश हो जा। बच्ची कहती है भैया मैं खामोश हो जाऊंगी, मैं नहीं रोऊंगी, बस एक बार बाबा से मिला दो। एक बार बाबा का सर मंगा दो, फिर नहीं रोऊंगी, एक बार बाबा का। बच्ची के बयान सुनकर हरम में कोहराम बरपा हो गया। ये गिरियाउजारी की आवाज महल में सोने वालों तक पहुंची, आराम में खलल हुआ। भेजा दरोगे जिंदा, क्या मसला है जाओ देखो। पूछा सीधे सज्जाद ने आगे बढ़कर बताया, आज मेरी बहन की हालत बहुत खराब है, थोड़ी देर के लिए इसके बाबा का सर ला दो, नहीं रोएगी। बच्ची खामोश हो जाए। पैगाम पहुंचाया गया, हुक्म दिया गया सरे हुसैन जिंदान में ले जाओ ताकि ये गिरिया खत्म हो। सरे हुसैन लाया गया, सीधे सज्जाद को दिया गया। सीधे सज्जाद ने रुखसारों के बोस पेशानी दी, आंसुओं का नजराना दिया, बाबा को सलाम किया, आवाज दी सकीना को, सकीना बाबा का सर आ गया। बच्ची दौड़ती हुई आई, भाई के हाथों से बाबा का सर लिया, गोद में भर के बैठ गई, जमीन पर बैठ चिमटा लिया सर को सीने से, बाबा के रुखसारों पे रुखसार रख दी, बयान करना शुरू कर दिया, बाबा मुझे छोड़कर जाना था तो साथ क्यों लाए। बाबा अगर छोड़कर जाना था तो अपने सीने पे सोने का आदि क्यों बनाया, बाबा मुझे नींद नहीं आती। बाबा मुझे नींद आ रही, मैं सोना चाह, मुझे तुम्हारे बगैर नींद, मुझे अपने साथ ले जा, मुझे छोड़ कर ना जाना बाबा। सकीना के बैन और हरम में मातम, बीबियां मातम कर रही, शोरो शैन बरपा है जिंदान में। अचानक सकीना की आवाज बंद हो गई, सकीना की आंखें भी बंद हो गई। मां मुतमईन हो गई कि मेरी बच्ची सो, जैनब के दिल को करार आ गया कि मेरी बच्ची सो गई, हरम मुतमईन हो गए कि सकीना सो गए। बस एक फर्द है जिंदान में सैयद सज्जाद, इधर सकीना की आंखें बंद हुई, आवाज बंद हुई, सैयद सज्जाद अपनी जगह से खड़े हुए कहते हुए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, जैनब घबरा के खड़ी तड़प करके, ए बेटा सईद सज्जाद ये तुमने कैसा कलमा जबान पे जारी किया, अभी तो मेरी बच्ची सोई है। सैयद सज्जाद कहते हाँ फूफी अम्मा, हाँ मेरी बहन सो गई, मगर अब ऐसी सोई है कि कयामत